नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम सब ये जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम करते हैं परिक्रमा पूरी दुनिया की, जान पाते हैं देश विदेश में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में और नजर डालते हैं खेल की दुनिया पर भी। इतना ही नहीं बल्कि याद करेंगे आज उन लोगों को भी जो किसी न किसी रूप में हमसे आज जुड़े हुए हैं। आज के इस अंक में मैं हूं प्राची प्रिया और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Prachi, Adab and a very warm welcome to all our listeners who have joined us on this Monday edition of Parikrama to give a perfect start to the week. And Prachi ne jaise bataya, hazve dastoor hum aate hain har din desh ki parikrama karne, in fact ab to videsh ki bhi parikrama karne, because Paris Olympics hai and every day we are giving you live updates from there through our correspondent. And apart from that, we have a selection of news, a very important segment of Dateline India, aur aaj to bahut hi khaas din hai Prachi, because today is International Tiger Day, so our topic for Dateline India is on that. A lot of that apart from business news and remembering some of the personalities associated with this day, but let's start with the headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says Quad is working to ensure Indo-Pacific remains free, open, secure and prosperous. Attends Quad Foreign Ministers Meeting in Tokyo today.
संसद के दोनों सदनों में यूपीएससी छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पांच और लोगों को गिरफ्तार किया।
सीबीआई फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली लीगल पॉलिसी केस।
सर्वोच्च न्यायालय का बिहार में 65% जाति आधारित आरक्षण रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार।
International Tiger Day is being celebrated today to raise awareness about tiger conservation.
और पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। रमिता जिंदल 10 मीटर महिला एयर राइफल के फाइनल में सातवें स्थान पर रहीं।
And yes, now it's time for Dateline India. And as I mentioned, that today is International Tiger Day. So we'll talk about that. And well, every year International Tiger Day is celebrated on 29th of July to raise awareness about conservation of tigers, focusing on protecting the natural habitats of the endangered species. It is vital in increasing online engagement and interest in tiger-related information. Many species of tigers, such as white, Royal Bengal and Siberian, each rule their respective habitats with pride and elegance. These animals face numerous threats, including illegal wildlife trade, climate change and habitat loss, as they are witnessing a rapid drop in their population. The day serves as a reminder of the urgent need to address such issues and take action to ensure these iconic big cats continue to thrive and flourish.
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दुनिया भर में बाघों की घटती संख्या पर विचार करने और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का एक खास अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बाघ न केवल एक शक्तिशाली और खूबसूरत प्राणी है, बल्कि वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। बाघों की घटती संख्या एक गंभीर चुनौती है। बाघों का शिकार, अवैध व्यापार, आवास का नुकसान और मानवीय गतिविधियों के कारण बाघों की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इस समस्या पर हमारा ध्यान केंद्रित करने और इसे पूर्ण रूप से हल करने के लिए एक हमें अवसर प्रदान करता है। इस साल वन्यजीव अपराध से निपटने, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करने, स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और बाघों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयासों को तेज किया जा रहा है।
एंड प्राची, लेट्स टेल आवर लिसनर्स कि आज का दिन तय किस तरह हुआ। वेल, इट वाज ड्यूरिंग द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन 2010 इन विच इट वाज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल टाइगर डे टुडे। This summit was held in St. Petersburg, Russia, which was organized by the Global Tiger Initiative, or GTI, which includes nations, international organizations, and conservation groups dedicated to tiger conservation. The Tiger Range Countries, or TRCs, nations with wild tiger populations gathered to address the alarming global decline in number of tigers. Recognizing the urgent need for coordinated efforts to protect these magnificent big cats and their habitats, TRC has decided to dedicate a day each year to raise awareness about tiger conservation and the challenges it faces. They chose 29th of July for International Tiger Day, marking the midpoint between the summit's first and last days, symbolizing the ongoing global effort to save tigers.
बिल्कुल, और हमें जरूरत है इस बात को भी जानने की कि बाघ संरक्षण का महत्व क्या है. सबसे पहले तो बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है. बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी अच्छे इकोसिस्टम और उसकी विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये भी जानने की जरूरत है कि जो खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है वो बाघ है, और शीर्ष पर आता है जंगली जानवरों को, मतलब एक जो उनकी आबादी है उसको नियंत्रित रखने में. तो बाघ संरक्षण से हम ये जान सकते हैं कि ये इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहें, क्योंकि इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप हमें अच्छी हवा और पानी जैसी पारिस्थितिक सेवाएं भी मिलती हैं.
And now we'll be true to the spirit of our show, that is, we'll do the parikrama of different of our country and go to different parts of the country and see what interesting stories our correspondents have. So, सबसे पहले सिलसिले की शुरुआत कहां से की जाए प्राची?
जी, 84 साल बाद चीता अपने घर गुजरात लौट रहा है. कच्छ के बन्नी के घासिया मैदान में चीता लाने की परियोजना की तैयारी चल रही है. मध्य प्रदेश के कूनू वन्यजीव अभयारण्य के बाद अब बन्नी का घास के मैदान चीतों का दूसरा घर बनेगा. दिसंबर तक करीब 10 चीतों को हवाई मार्ग से कच्छ लाया जाएगा. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है. वर्तमान समय में दुनिया में लगभग 7,000 चीते हैं, जिनमें से आधे से अधिक दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया और बोत्सवाना में हैं. भारत ने 1950 के दशक में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था. उस समय देश में भी एक भी जीवित चीता नहीं था. गुजरात में चीतों की मौजूदगी आखिरी बार वर्ष 1940 में विसावदर में दर्ज की गई थी. हालांकि 1939 और 1971-72 में कच्छ में चीतों का घूमने का रिकॉर्ड मौजूद है.
राइट, सो लेट्स गो ओवर टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट भारत.
दिसंबर 2023 में गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन को चीता संरक्षण केंद्र के लिए प्रस्ताव भेजा था. इस संबंध में राष्ट्रीय अभियान की कार्यकारी समिति की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में चीता प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी. अब 152 साल बाद कच्छ के घास के मैदानों में घूमते नजर आएंगे चीते. 500 हेक्टेयर का एक बाड़ा बनाया जाएगा जिसमें चीतों को रखा जाएगा. इस प्रजनन केंद्र में 8 क्वारंटाइन बोमा बनाया जाएगा और 8 सॉफ्ट रिलीज बोम्स बनाए जाएंगे. चीतों को यहाँ लाने के बाद उन्हें 50 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा. 4 मीटर ऊंचे बाड़े में वन विभाग के कर्मचारी चीतों पर लगातार नजर रखेंगे. निगरानी के लिए यहाँ चौकीदार, ट्रैकर और पशु चिकित्सक सहित स्टाफ तैनात किया जाएगा. रेडियो कॉलर टैग वन्य जीवों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगा. इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बन्नी ग्रासलैंड उप वन संरक्षक बीएन पटेल ने विशेष जानकारी दी.
बन्नी ग्रासलैंड डिवीजन में अभी एक नेशनल कैंपा फंड से चीता प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया है हमने, और उसकी जो मंजूरी मिली है अभी उसमें हमने मेनली 500 हेक्टेयर एरिया में एनक्लोजर बनाने के लिए प्लानिंग किया है, और उसका हम टेंडर कर रहे हैं. और हम जो काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसका अंदाज है कि वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा. उसके बाद नामीबिया या साउथ अफ्रीका से चीता यहाँ हम लाएंगे. अप्रोक्सीमेट नंबर अभी 10 नंबर का हम प्लानिंग कर रहे हैं, और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका मॉनिटरिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर रही है. चीता ब्रीडिंग सेंटर का जो पूरा प्लानिंग है उसका जो मॉनिटरिंग है वो NTCA न्यू दिल्ली से हो रहा है, और अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में ही गोविंद भारद्वाल सर जो है हमारे एडवाइजर है चीता प्रोजेक्ट के, उन्होंने भी साइट का विजिट किया है और हमें उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस भी दिया है. बन्नी ग्रासलैंड का जो एरिया है वो जनरली ग्रासलैंड अच्छी ग्रासलैंड है जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट लिया है, और उसमें कुछ साल्वाडोरा पर्सिका के पेड़ भी है, अकेशिया निलोटिका है, जैसे कुछ सवाना टाइप की एक ग्रासलैंड है ये, जो चीता के लिए एकदम सुटेबल है.
देश में चीतों को फिर से लाने के लिए 2022 में नामीबिया के 8 चीतों को लाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया है. कुनो की तुलना में बन्नी के घास के मैदान अफ्रीका के विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध सवाना के घास के मैदानों के समान है, इसलिए चीता के लिए जलवायु अधिक उपयुक्त होगी। वर्तमान में यहाँ मीठे पेड़ भी लगाए गए हैं। चीतों को गर्मी से बचाने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे। चीतों को बन्नी के भगड़िया इलाके में प्रजनन केंद्र में पिंजरों में पाला जाएगा। चीतों के बैठने और अवलोकन के लिए जलवायु, वन तालाब, कृत्रिम शेड, टीले सहित सुविधाएं विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद भारद्वाज ने भी हाल ही में बन्नी का दौरा कर इसका जायजा लिया था। सफेद रेगिस्तान और सौर ऊर्जा के साथ साथ अब कच्छ का नाम चीतों के प्रदेश से भी जाना जाएगा। गुजरात में इसी वजह से लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। एशियाई शेरों की तरह अब चीते भी गुजरात को अपना आशियाना बनाएंगे। परिक्रमा के लिए परेश मारू के साथ मैं भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, भुज।
And from the western part of the country, we now head towards the northeast. In Mizoram, the government is actively pushing for introduction of electric vehicles as part of the Go Electric campaign. Towards this objective, electric vehicle roadshow was held in Aizawl. The program was organized by State Designated Agency for Energy Conservation, Government of Mizoram. And we have more details by our correspondent Irene.
At the national level, the government of India is introducing electric vehicle in various parts of the country. Electric vehicle are environment friendly, which reduces carbon footprint because there is no emission. Another advantage is that electric vehicles are easy and cheaper to maintain because of their simple structure and operations. Speaking to Akashvani, R.L. Mwanpuyi, Chief Electrical Inspector, said that the roadshow is conducted to promote electric vehicle, which will help in energy conservation. Parikrama, Irene, Akashvani, Aizawl.
Himachal Pradesh mein varsh bhar anek mele va tyohar manaye jate hain, jo yahan ki samriddh sanskriti aur prachin paramparaon ke parichayak hain. Aisa hi Pradesh ki samriddh sanskriti ko darshata Chamba ka aitihasik 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इन दिनों मनाया जा रहा है।
चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला एक पारंपरिक लोकप्रिय वार्षिक उत्सव है, जो आमतौर पर जुलाई महीने में आयोजित होता है। ये त्योहार मक्के की फसल की कटाई के उपलक्ष्य में और आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण मिंजर जुलूस है, जो एक भव्य और रंगारंग कार्यक्रम होता है। जुलूस का नेतृत्व एक सुसज्जित रथ द्वारा किया जाता है, जिसमें लोक नर्तक, संगीतकार और पारंपरिक पोशाक पहने भक्त शामिल होते हैं। मिंजर मेले के दौरान लोग चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर को फूलों से खूबसूरती से सजाया जाता है और भक्त मिंजर चढ़ाते हैं, जो सुनहरी मक्के के रेशम का प्रतिनिधित्व करने वाले रेशम के लटकन होते हैं। इन मिंजरों को शुभ माना जाता है और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में दोस्तों और परिवार के बीच आदान प्रदान किया जाता है। मिंजर मेला न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि सामाजिक समारोहों और उत्सवों का भी समय है। ये विभिन्न समुदायों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाता है, जिससे एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। मेले के शुभारंभ अवसर पर कल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान रघुवीर व लक्ष्मी नारायण को मिर्जा परिवार द्वारा रेशम, डोरी और तिल्ले से तैयार की गई मिंजर अर्पित की गई। मान्यता है कि मिर्जा जरी गोटे के काम में माहिर थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम जरी से बनी मिंजर भगवान रघुवीर जी और लक्ष्मी नारायण को भेंट की थी। तब से लेकर आज तक 300 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन इसी परिवार के वंशज सबसे पहले भगवान रघुवीर जी और लक्ष्मी नारायण को जरी गोटे से बनी मिंजर अर्पित करते हैं और तभी मेले की शुरुआत होती है। मिंजर मेले में देश भर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और नृत्य मंडलियों, पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोगों, पारंपरिक ढोल बजाने वाले और पुलिस और होमगार्ड बैंड के साथ देवताओं की रंग बिरंगी मिंजर शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। मेले के समापन अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक कुंजड़ी मल्हार गीत गाया जाता है और नारियल व मिंजर को रावी नदी में विसर्जित किया जाता है। निश्चित ही इस तरह के मेले व त्योहार हिमाचल प्रदेश की समृद्ध व प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
And now we head down south to Karnataka. The Tithu Krishi Vigyan Kendra has come forward to help jackfruit farmers that are exploited by middlemen. They were provided kiosks besides the highways to sell directly to the customers, thereby getting a good price for their produce. A very novel initiative in Karnataka, and we have more details by Sidhindra.
द तिप्टूर कृषि विज्ञान केंद्र इन तुमकूरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका केम फॉरवर्ड टू हेल्प द जैकफ्रूट फार्मर्स बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द मिडलमैन. द फार्मर्स हु सोल्ड द जैकफ्रूट एट मीगर रेट्स टू द मिडलमैन रीप्ड बेनिफिट्स बाय सेलिंग डायरेक्टली टू द कंस्यूमर्स बिसाइड द बेंगलुरु शिवमोग्गा हाईवे विद द हेल्प ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र. देयर वन एंटायर जैकफ्रूट वॉज बॉट फॉर जस्ट 30-40 रूपीज बाय द मिडलमैन, बट बाय सेलिंग डायरेक्टली टू द कंस्यूमर्स द फार्मर्स अर्न्ड 100 रूपीज फॉर ए डजन ऑफ जैकफ्रूट flakes. If one entire jackfruit has 60 fruit flakes in them, then the farmer earned 500 rupees from the entire fruit. The 63-year-old T.K. Kumaraswamy from Timapur village shared his experience, saying that he had never thought that he could earn so much from jackfruit, which is not the main crop for the farmer. Another farmer from T.N. Patrehalli, the 34-year-old Bharat, has said that Krishi Vigyana Kendra provided them trendy kiosks that attracted the consumers. He said they have two jackfruit trees that yield around 300 special Chandra Halasu variety of jackfruits during every season, out of which normally a few fruits were sold and the rest given away to the friends and relatives. But this time, the entire yield was sold out in just 3 hours and has earned good revenue. This is a success story that needs to be emulated by every Vigyana Kendra of the Agriculture Department. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
Today's episode, we remember educationist and social reformer Ishwar Chandra Vidyasagar, who died on the 29th of July, 1891. Considered as the father of Bengali prose, he was the most prominent campaigner for Hindu widow remarriage, leading to passing of the Hindu Widows Remarriage Act, 1856.
Ishwar Chandra taught at Fort William College and Sanskrit College, becoming its principal in 1950. As principal, he brought about a range of significant changes in affairs of the Sanskrit College by removing the caste barriers and opening its doors to all Hindus. Apart from modernizing and reforming Sanskrit College and establishing vernacular and girls' schools, his most important contribution to education was the textbooks he wrote and published.
Until he published his pioneering work, Varna Parichay, An Introduction to the Alphabet, 1851, there was no such model reader for the beginners. Like Varna Parichay, there was no Sanskrit grammar written in Bangla until he published his Samskrita Vyakraner Upakramanika, An Introduction to Sanskrit Grammar, in 1851. His Vyakran Kaumudi was another monumental work on grammar.
Ishwar Chandra Vidyasagar continues to be the ocean of knowledge and an inspiration in modern India too.
We also remember freedom fighter Aruna Asaf Ali, who died on the 29th of July, 1996.
Born as Aruna Ganguly on the 16th of July, 1909 in Kalka, Haryana, Aruna faced opposition from family and society when she married freedom fighter Asaf Ali in 1928. She actively participated in Congress programs and the Salt Satyagraha.
On the 8th of August 1942, the All India Congress Committee passed the Quit India Resolution at the Bombay Session. The government responded by arresting the major leaders. Young Aruna Asaf Ali presided over the remainder of the session on the 9th of August and hoisted the flag at the Gwalior Tank Maidan.
The police fired upon the assembly at the session. Aruna was dubbed the heroine of the 1942 movement for her bravery.
Aruna was appointed as the first Delhi mayor in 1958. She received India's highest civilian award, the Bharat Ratna, posthumously in 1997.
We also remember freedom fighter Satyendra Kumar Mishra, who was born on the 29th of July 1912. He was imprisoned on multiple occasions for his anti-British activities.
Satyendra Prasad joined the freedom struggle in Jabalpur, Madhya Pradesh. He took part in anti-alcoholism drives, forest satyagrahas and salt satyagraha and was imprisoned in Jabalpur jail.
In the jail, he took part in the flag satyagraha and used his blood to colour the flag red. During the Quit India movement in 1942, he led the youth in Jabalpur against British imperialism.
He was arrested and imprisoned for 18 months in Jabalpur, Nagpur, Sioni and Mandla jails.
Satyendra Prasad continued to serve people till his death on the 4th of April 1999.
That was Azadi Ka Safar, and now all eyes are towards Paris, and of course hona bhi chahiye because Paris Olympics apne pure shabab pe hain, and our correspondent Savio is joining from there.
As good weather returned to Paris this morning, it was time to bask in the sunshine for India's power duo in badminton, Ranki Reddy and Chirag Shetty, who were handed a walkover after their German opponents Lamphus and Seidel withdrew. However, the joy in the Indian badminton camp was short-lived when Ashwini Ponnappa and Tanisha Krasto lost to Japan's N. Matsuyama and Seishida 11-21, 12-21 in the group play stage of the women's doubles. Coming up soon is India's Lakshya Sen, who will take on Julien Karadji from Belgium in the men's singles group play. There is a lot of shooting action, but I have to tell you that just a while back, Ramita Jindal has bowed out of the women's 10-meter air rifle competition. In hockey, India faced Argentina in the second group match. The men in blue had earlier defeated New Zealand 3-2 in a hard-fought match. In archery, Indian men will feature in the men's team quarterfinals. And late in the evening, it will be Manika Batra who will be playing her second round women's singles match. But I have to tell you that the Indian contingent and the Indian fans all around Paris are really reveling in the fact that Manu Bakker yesterday became India's first ever woman to clinch a medal in shooting. Savio de Noronha in the French capital of Paris.
And Savio, that was a very fine report, but what is the latest update? Well, that was the report from Savio, and now towards we head towards business news now. And well, today was an interesting day in equity benchmark indices. Sensex and Nifty ended flat with a thin gain today. And Prachi, ye shurat bada ajeeb din tha, because ek point aisa aaya ki jab bank Nifty 1000 tak ke badh chuka tha, 1000 points, and then it started plummeting to, you can say, to very, very lower depth. Sensex added 23 points to close at 81,356. Nifty added just 1 point to close at 24,836. In the global crude market, Brent crude was trading at $81.03 per barrel. WTI crude is trading at $76.98 per barrel when reports last came in. In the bullion market, 24-carat gold is trading at 68,870 rupees for 10 grams. So, sona kuch sasta hua hai, to jinko khareedna hai, jaake foreign khareed sakte.
Khushi ki baat hai.
Yes, and silver was trading at 82,500 per kg when reports last came in. And of course, now we'll see ki kaun si wo hastiyan hain Prachi jinki ya to aaj birth anniversary hai ya death anniversary ya birthday. To is fehrist mein sabse pehla naam kiska hai?
Ji bilkul Saira, is fehrist mein sabse pehla naam hai Johnny Walker ka, aur aaj unki punyatithi hai. Johnny Walker hindi cinema ke ek suprasiddh hasya abhineta rahe hain. Inhone जो अपनी जिंदगी की शुरुआत की वो एक बस कंडक्टर के रूप में की. सोचे, बस में यात्रियों से मजाकिया बात करने में उन्हें बड़ा मजा आता था. फिल्मों में जॉनी वॉकर मीठी फुहार की तरह राह देने के लिए आते थे. जॉनी वॉकर के चेहरे को अगर आप गौर से देखेंगे सायरा, तो लगेगा कि कोई मुखौटा है, क्योंकि कोई साधारण आदमी हो उसके चेहरे पर इतने भाव होना, वो भी बिना किसी श्रम के, ये बहुत बाकमाल बात है. यूं सोचिए, अपनी इस अदा से वे फिल्म की गंभीरता की बर्फ को तोड़ने का काम करते रहे हैं और हमेशा ही करते रहे थे. अब वो हमारे साथ नहीं है, तो अपनी जो भी उनकी अदाकारी उन्होंने अपने पूरे एक लाइफ टाइम में जो दिया है उसको हम इस छोटे से सेगमेंट में तो शायद नहीं बयां कर सकते, मगर फिर भी सुनिए फिल्म प्यासा से उन पर फिल्माया एक गीत।
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चम्पी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चम्पी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल।
What an immortal song, और इसको जॉनी वॉकर ने तो अपनी कह सकते हैं जो आपने कहा ना एक ही लम्हे में कई उनके एक्सप्रेशन आते थे उससे तो इमोर्टल किया ही। बट इवन लुक एट रफीज वॉइस, सच अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी एंड व्हाट अ वर्सटाइल सिंगर। आप देखिए एक रोमांटिक सॉन्ग भी कितने ईज से गाते थे और इस तरह के गाने भी,
कोई शक नहीं।
यस, सो व्हाट अ नंबर दैट वी हर्ड। दिल नहीं चाह रहा था कि रुके, लेकिन अब हम लोग दूसरी हस्ती को भी याद करते हैं। टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जहांगीर रतनजी दादाभाई Tata, who is known as J.R.D. Tata, who is well known for the phenomenal success of the Tata Group and is regarded as the father of the Indian aviation sector. और आप उनकी ठोस पर्सनैलिटी का उनके इस कोटेशन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। He said that I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. So I think that's a very beautiful quote that all of us probably could imbibe in our lives as well.
बिल्कुल, और J.R.D. Tata के योगदानों के कारण उन्हें दुनिया भर के तमाम पुरस्कारों से भी नवाजा गया। सन 1954 में फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार लीजियों द ऑनर से नवाजा। सन 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया।
Yes, and in fact today the Tata Group is no more just a group, it's a conglomerate. It straddles in various sectors including steel, aviation, hotels, cars, information technology, you name it, and Tata is a pioneer and also a leader in that.
Bilkul.
Today we are also remembering C. Narayana Reddy, a Telugu poet, writer and critic, a poet of over 6 decades of standing. Dr. Reddy has to his credit more than 80 publications which include poems, songs, lyrical dramas, ballads, essays, travelogues, ghazals originally and in translation and literary criticism. His works have been regarded as trendsetters. His research work on modern Telugu poetry, assessing the influence of tradition and experiment on it, became a classic since its publication in 1967. He has nearly 3,500 film songs to his credit.
बिल्कुल, और आज अनूप जलोटा का भी जन्मदिन है। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी में कोरस गायक के रूप में की थी। उन्होंने आम तौर पर संतूर वादक, ढोलक वादक, सारोद वादक, सारंगी वादक, वायलिन वादक, सितार वादक, तबला वादक और गिटार वादक का भी समर्थन प्राप्त होता रहा है। तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुनना चाहिए उनका एक बहुत ही लोकप्रिय भजन रंग दे चुनरिया।
रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया।
Yes, that was Anup Jalota, the Bhajan Samrat. और अब वक्त जो है कह रहा है कि that it's time to wrap up our show.
क्योंकि समय हो चलता है कि अब हम आपसे अनुमति लें तो इजाजत दीजिए प्राची प्रिया और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करने की।
नमस्कार।